आज वो माएं किधर हैं कि जिनकी पूरी जिंदगी का गम हम बच्चे थे, और वो माँ किधर है जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपने बच्चों को चलाती थी। आप देखिए कि स्कूल ढूंढते हैं ना अपने बच्चे का, तो 10 स्कूल फिरते हैं फिर चूज करते हैं। बस दफ़ा तो मूव ही उधर करते हैं लोग जहाँ स्कूल अच्छे होते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब बच्चे के सफारा पढ़ने का मौका आता है, जब बच्चे को नाजरा पढ़ाना है, सबक पढ़ाना है, तो फिर जो अवेलेबिलिटी है उसको ले लो। वो मौलवी साहब कौन हैं, कहाँ से हैं, उनका कहले पर क्या, उनका अखलाकी पहलू क्या, बहुत कम। आपको होता है कि जैसे मैंने भी आपको इमाम बुखारी की मिसाल दी है, माओं की तड़प होती थी कि हमारे बच्चे कुरान तो कुरान हदीस के आलिम बने। आज आप अपने ऊपर लीजिए, कब आपने कितनी दफ़ा अपने बच्चे को कोई एक हदीस याद करवाई? कराते होंगे, देखिए मेरी बात माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानती। आप में से 99% लोग मेरे लिए नए हैं, एक दो लोगों के नामों के सिवा मुझे शायद किसी का नाम भी नहीं आता होगा। मैं जो बात करती हूँ ना, जनरल मुशाहदे की बुनियाद पे करती हूँ। आज हम अपने बच्चों को राइम सिखा लेंगे, नशीद सिखा लेंगे, हदीस कब सिखाते हैं? कुरान की आयत हिफ्स कब कराई हमने अपने बच्चे को? आप कहेंगे रखे हुए मौलवी साहब। देखिए मौलवी साहब का ये काम नहीं है, ठीक है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब माँ के हाथ में कुरान हो और बच्चा कुरान सुना रहा हो, फिर कुरान दिलों में आता है। और मैं तो कहती हूँ कि आने वाले दौर में देखिएगा ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। माँ उस्ताद होगी, फिर उम्मत की हालत बदलेगी। तारीख गवाह है इस बात की कि जब माएँ मुअल्लिमात होती थी तो मोहम्मद बिन कासिम जैसी नस्लें पैदा होती थी, मौविज और मास जैसे बच्चे पैदा होते थे। आप हंसा का किस्सा सुन लीजिए, आप हज़रत ज़ुबैर की माँ का पढ़ लीजिए, आप याद रखिएगा कि वो माँ जो कुरान और हदीस से अपने बच्चों को जोड़ती थी, वो माएँ थी जो खुद जुड़ी हुई थी। जिस माँ के सीने में 114 सूरतों में से चले 14 सूरतें भी हैं, और उसको पढ़ते वक्त उसको समझ आ रही होती है कि ये क्या कहा सुना जा रहा है, अल्लाह के हुक्म से फिर वो अपने बच्चे को भी सिखाएगी। और वो माँ किधर है जो हया और हिजाब का सबक देती थी? ये बड़ा कड़वा पहलू, ये मैं आपको उसी के टिप्स है। अगर आप कहें तो मैं पूरा आर्टिकल पढ़ के सुना दूं अपने लफ्ज़ों में, सुन ही लीजिए। वो लिखते हैं कि वो माँ किधर है जो औलाद की पहली दरसगाह थी, वो माँ किधर है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाने वाली थी, वो माँ किधर है जो हया और हिजाब का सबक देने वाली थी, वो माँ किधर है जो पर्दे वाला लिबास पहनाने वाली है। आज माएँ तो बहुत मौजूद हैं जो चादरों और बुरकों में लिपटी हुई हैं, लेकिन औलाद को वो पहनावा देती हैं जो ज़माने का रिवाज है, जिसको पहनकर भी बेलिबास नज़र आते हैं। आज माएँ मौजूद हैं जो अपनी बच्चियों को हयादार नहीं बनाती। आज माएँ मौजूद हैं जो अल्लाह का खौफ नहीं रखती ना औलाद की तरबियत करती हैं। वो इस बात से बेखबर हैं कि औलाद जैसी नेमत किससे पूछ होगी कि तुम इसको क्या सिखाती और पढ़ाती थी। आज माएँ मौजूद हैं, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, जो अपने 2 साल के बच्चे के आगे मजबूर हैं और कहती हैं क्या करूं, मानता ही नहीं मेरी बात। सच बताएं, जो माँ अपने 2 साल के बच्चे के आगे मजबूर है, माजरत के साथ जब वो 20 साल का होगा ना, तो वो रो रही होगी और आगे हाथ जोड़ रही होगी, और अल्लाह के नबी की वो हदीस सच होगी कि लौंडी अपने आका को जनेगी। अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है? जिसने जाना जू तो वो लौंडी कैसे रही? और ये फिर फिकी असूल है, माँ तो नहीं लौंडी हो सकती। मतलब ये है कि औलाद इतनी सरकश हो जाएगी कि माँ बाप को लौंडी और यानी ग़ुलाम की तरह ट्रीट करेगी, सरकश हो जाएंगी औलादें। आज माएँ मौजूद हैं वो जिनको ज़माने की रिश्तेदारों और महल्ले वालों और दोस्त अहबाब की हर बुराई का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं अपनी और अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रही हूँ। जागो है आज की माँ, ये एक ज़ैनब का वाक़या नहीं, हर घर में एक ज़ैनब मौजूद हो सकती है। अगर हम माओं ने अपने बच्चों की हिफाजत करना न सीखी, दुनिया को राह रास्त पे लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपना घर, अपनी ज़ात को संवारना और अपने बच्चों की तरबियत करना, ये तो हमारा ही ज़िम्मा है। याद रखिएगा, औरत को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मुकाम दिया। ماں کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ سچ بولے گی، جھوٹ سے بچے گی، نماز کا اہتمام کرے گی، با اخلاق ہوگی، بری باتوں سے رکے گی، گناہوں سے رکے گی، بچے کو کہنا ہی نہیں پڑے گا. ایک انگلش کی کوٹیشن ایک جگہ شیئر کی تھی کہ اف یور کڈس ناٹ لسن ٹو یو، بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے، تو غم نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو دیکھتے تو ہیں، نہیں سمجھے؟ اگر وہ آپ کی سنتے نہیں ہیں تو نہ سنیں، آپ کو دیکھ تو رہے ہیں نا، آپ اچھے بنیں گے وہ اچھی دیکھ رہے ہیں چیز، اور اگر آپ اس سے اپوزٹ ہیں تو پیچھے ہیں. اور یاد رکھیے اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ماؤں کو تربیت کے وہ خوبصورت رہنما اصول دیے تھے، کہ جس تربیت کا اثر تک ابن عمر، ابن عباس اور ابن زبیر جیسے لوگوں کو دیکھے، یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک اچھی ماں بننا بنایا ہوا ہے. تو میرے آپ کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اوپر غور کریں. اگر میں فی زمانہ لائف سٹائل کو تھوڑا سا سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کو کچھ ٹپس دے دوں تو شاید میں آپ کا فائدہ کر سکوں. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اگر ہم سٹیپ سے شروع کریں، بچہ پیٹ میں ہے، آپ کی ذمہ داری شروع. ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ سسٹرز ہو سکتے ہیں میڈیکل کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہو. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی سنتا بھی ہے، اب تو کہتے ہیں پیٹ میں وہ خواب بھی دیکھتا ہے. اور کسی کا جوک تھا کہ اب تو شاید آنے والے دور میں پیٹ سے ای میل بھی بھیجے گا کہ ماما میں ٹھیک ہوں، اور وہاں وہ ٹیب سے کھیل کے میسج کر رہا ہوگا، اور بڑی بات نہیں. وما ذالک علی اللہ بھی عزیز. اب آپ دیکھیے ایک ماں کی پریگنینسی کے دوران کی جو موومنٹس ہیں، جو اس کی حرکت، ایک تو تھی نا حرکت موومنٹ، اور ایک ہوتا ہے چال چلن، کیا اس کا بچے پہ اثر نہیں آئے گا؟ امام شافعی کے پاس کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی تھی، بالکل نیو بورن بیبی تھا اس کے ہاتھ میں، کہنے کہ امام صاحب بیٹا ہوا ہے، ذرا گائیڈ لائن دیجئے کہ اس کی تربیت کیسے کروں. تو بچے کو دیکھا اور کہا کہ ماں تو نے آنے میں دیر کر دی. کہا دیر کر دی، ابھی تو یہ پیدا ہوا. معذرت کے ساتھ ہم میں سے آج کے دور کا کوئی ہوتا تو تب جاتا جب بچہ بگڑ چکا ہوتا اور پانی سر سے اوپر ہو جائے، تو ہم بچی کو ساتھ پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، اور یقین کریں آپ تک نہیں بات کر رہی، وہاں سے سیدھا ادھر آئیں گے اور کہیں گے السلام علیکم، کیا حال ہے، یہ بچی کو لائی ہوں، ذرا آج اس کو خوب بتائیں ماں کی عزت کیسے کرتے ہیں. آپ کے اتنے بڑے مجمع کے بیچ میں آپ ایک بچی کو شرمندہ کر رہے ہیں، کیا وہ میری بات سنے گی بعد میں؟ یعنی آج ہم اپنے بچوں کو دین بھی سکھانے لاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ان کو ماں باپ کے حقوق بتاؤ. حالانکہ یاد رکھیے، آپ اپنے بچوں کو اللہ کے حق دے دیں، بچہ خود بخود آپ کے حق دے گا. آج ہم نے اپنے بچوں کو کٹی ہوئی پتنگوں کی طرح چھوڑ دیا، معاشرے نے ان کی تربیت کی، بے ڈگر چلتے گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئیں تو وہ ہم سے محبت کریں. یہ اللہ میریکل کر دے تو کر دے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ پہلے بچوں کی گھٹی میں توحید پڑی ہوئی تھی؟ دیکھیے کوئی بچہ حافظ اور عالم بن کے نہیں آتا، لیکن کم محنت کرنی پڑتی تھی. میں نے ایسی ایسی مائیں دیکھی ہیں، یقین کریں دن کے پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے صرف وہ بچوں کے لیے بھاگ رہی ہیں. ویسٹ میں چونکہ عورتیں موسٹلی ڈرائیو بھی کرتی ہیں، شوہر جاب کر رہے ہیں، دور ہیں، وہاں پہلے اسکول چھوڑنے جاتی ہے، پھر لینے آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو مسجد لے کے جاتی ہے، پھر مسجد سے واپس لاتی ہے، پھر اس کو اسکائپ پہ ساتھ بیٹھ کے سبق پڑھواتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہوم ورک کراتی ہے، پھر وہ سو جاتا ہے. یعنی ماں کی محنت اتنی ہے پر نتائج کوئی نہیں ہے. آج وہ وقت آ گیا، میں یہاں بیٹھ کے کوئی مبالغہ نہیں کروں گی، دیکھیے جو چیز ویسٹ میں آ جائے نا بس وہ سمجھے اللہ معاف کرے، اب تو اتنا کوئک کمیونیکیشن ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پہلے تو میں 5 سال کہتی تھی، اب تو مجھے لگتا ہے 1-2 سال ہی ہو گیا. 18 سال کی عمر کے بعد ویسٹ میں کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے ساتھ رہو. شادی کر سکتے ہیں 18 سال کے بعد آپ، پہلے نہیں کر سکتے. ہاں زنا کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اور آج حالات یہ آ گئے کہ بچہ ماں باپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ آئی ایم ویٹنگ فار مائی 18th برتھ ڈے، اور 17 سال کچھ مہینے کا تھا تو اس نے وارننگ دے دی کہ جس دن میری 18th سالگرہ ہوگی میں تمہارے پاس نہیں رہوں گا. اور یہ خبر میرے تک پہنچی، بالکل میں جانتی ہوں جن کی یہ بات ہے، کیا وہ ماں باپ کے دل پہ گزرتی. اور جس دن 18th برتھ ڈے تھی اس کی، اس دن جو میسج ملا، ہی ہیز گون، نہ بتایا کدھر نہ کون، نام بدل لیا، سیکس بدلنا چاہتا ہے، اپنی شہر چھوڑ دیا ہے، اور کہتا ہے میرا پیچھا نہ کیجیے گا. क्योंकि अगर वो 18 साल का होने से एक भी दिन पहले चला जाता ना, तो गवर्नमेंट ने उसको ढूंढ ढांड के माँ बाप के पास ले आना था। 18 साल के बाद आप आजाद हैं, आप जो चाहें करें। आप इमेजिन कर सकते हैं उस माँ और बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जिन्होंने 18 साल उस पौधे को पानी दिया होगा। अब इसमें माशरे का असर है, नेट का कसूर है, माँ बाप की कमी है बेशी है, मैं इस पर कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है ये वक्त दूर नहीं। जिस तेजी से आज बच्चों और माँ बाप के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, साथ हमारे बैठते हैं, एक ही छत में सोते होंगे, लेकिन वो ज़हनी तौर पे हमारे नहीं हैं। हर एक के हाथ में एक ऐसा गैजेट है कि जिसने घर को कैफे में बदल दिया, वो इंटरनेट कैफे बन चुका है। एक टीवी पूरे घर वालों को एंटरटेन करता था ना, वो अच्छा करता था बुरा करता था इशू नहीं है, लेकिन मजबूरन सबको हमारी ज़ुबान में टीवी लॉन्च में बैठना पड़ता था। और उस वक़्त भी जो रिमोट कंट्रोल होता था वो बड़े भाई के या बाप के हाथ में होता था कि ये सीन नहीं देखना, उसको आगे कर दो, और ये बच्चों के नहीं देखने वाली तो ये बड़ों वाली, नहीं तो ये फलां थी। आज कौन टीवी देखता है? अब तो ये सारी स्क्रीनें उतर के देखिएगा, मस्जिदों में आ जानी है, क्योंकि आपके बच्चे का टीवी उसके हाथ में है। आपके बच्चे की सिर्फ उंगली की टिप के ऊपर हर सीन बदल सकता है फोन पे। आखिर क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मैं इस वक्त ना तो इस बात पे बात करने वाली हूँ कि बच्चे ख़राब है, नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं जो जिम्मेदारी अपने दिल पे महसूस करती हूँ वही आपको देना चाहती हूँ कि आप अगर एक मिसाली माँ हैं तो ये सर्टिफिकेशन किस सूरत में मिलेगी? ये आपके बच्चों के आपसे मोहब्बत और आपसे ताल्लुक की नज़र से मिलेगी। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या हाफिज़े कुरान बन जाए, या आलिम बन जाए, अगर वो आपसे कटा हुआ है ना, तो माजरत, आप अच्छी माँ नहीं है। आप में इतने गट्स भी नहीं है कि वो टुकड़ा जो 9 महीने जिस्म में आपके साथ जुड़ा रहा वो आपसे अपने दिल की बात कर सके। अपने बच्चों को टाइम दें, तवज्जो, रोटी ना दें, वो खा लेंगे। बच्चा एक वक्त रोटी ना खाए, माँ की जान पे बन जाती है, पीछे ले लेके फिरती, हाय रोटी नहीं खाए। हालांकि बाहर 70 माएँ बैठी हैं, खिला लेंगी उनको, पैसे दो, हर दुकान से रोटी मिलती है, पर माँ नहीं मिलती, माएँ बाज़ारों से नहीं मिलती। आज अगर आपने मैंने अपने आप को इस चीज़ के साथ ना जोड़ा तो याद रखिए कि हमारी नस्लें हमारी नहीं रहेंगी। तारीख गवाह है इस बात की कि जब तक माँ और बच्चे का ताल्लुक कायम था, बच्चे आगे बढ़कर चलते गए और उन्होंने दुनिया में वो कारनामे अंजाम दिए। और वो बच्चे जिनकी माएँ बचपन में फौत हो गई, या जिनके पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई, जिसको आप कहना चाहिए कि ब्रोकन फैमिलीज, उनके बच्चे क्रिमिनल्स बन जाते थे। अक्सर लोग कहते हैं कि जेलों में जो कैदी होते हैं और जो भी गलत काम करने वाले गैंग ग्रुप्स हैं, अगर उनके करीब बैठें तो बचपन में उनको कोई ना कोई सदमा पहुँचा होता है। हमारे पास कुछ माओं की मिसालें हैं, मैं तारीख से चंद हवाले आपके साथ शेयर करूंगी। आप इन सारी बातों को जानती हैं, लेकिन आज आप इसको इस सोच से जानेंगी कि आप ऐसी माँ हैं कि नहीं। सबसे पहले एक मासूम इस्माइल की माँ, उम्मे इस्माइल का नाम सुना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बड़े अरमानों से एक दुआ मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेकों में से दे। अल्लाह ने सुन ली, इस्माइल नाम का बच्चा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह कहते हैं इसको और इसकी माँ को छोड़ो दंगल में, दूर छोड़ दिए। फिर गैरी जी जर इन का लफ्ज़ आता है कुरान में, आता है, खैर चली गई। आपने सबने किस्सा सुना हुआ ना उम्मे इस्माइल या हजरत हाजरा का, आप अपने ऊपर लीजिए। आज अगर आप में से किसी को इन हालात से दो चार होना पड़े जिससे हजरत इस्माइल की माँ दो चार हुई थी, क्या आपका और मेरा सब्र ऐसा ही होगा कि माँ अपने बच्चे के साथ जा रही है और शौहर को कहती है आप हमसे नाराज हैं? खामोश, मैंने कुछ कह दिया, कोई बात बुरी लग गई, इब्राहिम खामोश है। अच्छा, चल रही है, हमारे जैसे दौर की कोई पढ़ी लिखी औरत होती तो पता नहीं वहाँ खड़े होकर पुलिस बुला लेती कि देखो ये कह क्या रहे हैं और ये कितनी इंसानियत सोच बात कर रहे हैं और इस्लाम कैसा मज़हब है और ये वो, नहीं, खामोश। आखिर में एक बात कहती हैं सिर्फ ये बता दें आपको इसका अल्लाह ने हुक्म दिया। तो इब्राहिम ने कहा था बस, फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। इतना तवक्कुल अल्लाह पर है आज आपके शौहर आपको इस इस्लामाबाद शहर से उठाकर किसी दूर के गांव में ले जाए ना, कि चलो भाई बेगम वहाँ जाके शिफ्ट होते हैं, तो हमें 10 सवाल उठेंगे। वहाँ बीकन हाउस है, वहाँ कनेड कॉलेज है, वहाँ अमेरिकन ब्रांच है, वहाँ मैकडोनल्ड की जाके चेक करें चेन है, मेरा बच्चा तो मैकडोनल्ड खाता है, और 2-4 जुमले आपको जोड़ना, मुझे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो प्रदेश से अपने मुल्क में आते हुए सबसे पहले इन सवालों का जवाब पूछते हैं कि जहाँ हमें रखोगे मियाँ साहब, वहाँ ये सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। उस माँ का क्या था कि अगर अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। क्या आज आपका और मेरा अल्लाह पर इतना तवक्कुल है? और क्या फिर अल्लाह ने उस औरत को ज़ाया किया? वो औरत इन्नस्सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, एक औरत के कदमों पे क्यामत तक के मर्दों को चला दिया। क्या औरत तू चल, क्यों? इसलिए कि जो कदम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, अल्लाह उनको ज़ाया नहीं करता। ज़ाहिर देखने में वो एक बच्चे की ब्यास थी, लेकिन वो एक नस्ल की ब्यास थी। अगर बुढ़ापे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर इस तरह से ख़राब ना किया होता ना, तो ये खाना कब आबाद नहीं होना था। याद रखिए, वो एक ऐसी जगह पे बीवी बच्चे को छोड़ के आते हैं जहाँ तिनका भी नहीं उगता, वहाँ अगर एक माँ बच्चे की वजह से जमजम का कुआं निकला और वहाँ से अल्लाह ने अपने घर को रखा, तो क्या आज के दौर में हम दीन के लिए ये हिजरतें कर सकते हैं? क्या आज हमारा अल्लाह पर इतना ट्रस्ट है? हम तो अपने बच्चे को दीन सीखने के लिए अगर डिवोट करें ना, तो लोग कहते हैं खैर तो है, ये कमज़ोर है, ये स्कूल में फेल हो गया। अच्छा क्या वजह है इसका, क्या चक्कर है? और नऊज़ुबिल्लाह, जो शख्स देख नहीं सकता उसके साथ हमने लफ्ज़ हाफिज़ लगाए ही हुआ है, कहते हुए भी खौफ आता है। जो बच्चा 2-4 साल फेल हो जाए, उसको कान से पकड़ कर मस्जिद में ले आते हैं, मौलवी साहब इसको हाफिज़ बना दें, ये स्कूल में नहीं चल रहा। और बाकी वो बड़े तेज़ है, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। क्या आज हमने ये क्लासिफिकेशन नहीं सोच ली अपने दिलो दिमाग में कि अगर हमारे बच्चे ज़हीन हैं, टैलेंटेड हैं, स्मार्ट हैं, तो वो दुनिया की तालीम लेंगे, और अगर सीधे साधे भोले भाले कुछ इस किस्म के हैं, तो फिर उनको पकड़ो और मस्जिदों में डाल दो। हम मुसलमान हैं, ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे मिला। देखिए, जिस तरह मदीना तैयबा था ना, इसी तरह पाकिस्तान है। मैं आज उसकी डिस्क्रिप्शन पे ना जाऊँ तो बेहतर है, लेकिन जो नबी सल्लम के दौर में मदीना की सिचुएशन थी ना, सरकमस्टांसेस और हालात, सेम थिंग इस वक्त वो पाकिस्तान की। और नबी सल्लम की सारी हदीसें देख लीजिए, उसमें आपको आखिरी दौर में इसी इलाके में एक बड़ी फतह की खुशखबरियाँ मिलती हैं। इस वक्त ये जो 20th सेंचुरी चल रही है ना, आप देखिए ना, 2018 है ना, ये सेंचुरी बहुत बिग डिफरेंस पैदा करने वाली सेंचुरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिलों में वो जज्बे उठने शुरू हो गए हैं, वो जज्बे शुरू हो गए हैं जो नबी सल्लम के दौर की माओ में थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह माँ जाग रही है। आप जैसी माएँ जिनके दिलों में इस चीज़ का जज्बा है, दर्द है, और यकीनन आपको यहाँ आज दीन की मोहब्बत लेकर आई है। आपको क्या ज़रूरत थी इधर आने की? और बच्चों को साथ लेकर आना आसान काम नहीं होता, ये इस बात की अलामत है कि तब्दीली आने वाली है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। ज़रूरत इस बात की कि माँ की दिल की मट्टी को इल्म से गीला कर दो। जब माएँ खुद अल्लाह पर नज़रें रखती हैं ना, तो अल्लाह ताला बच्चों को भी उतना ही दे देता है। आप देखिए कि कितना रोए होंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध के लिए, तो माँ के जिस्म से दूध छोड़ दीजिए, पानी ख़त्म हो गया, अल्लाह ने ज़मीन से जमजम का चश्मा डाल दिया। अगर इस्माईल की माँ ना कहती जम 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 जम, तो रुकना नहीं था। हदीस में आता है कि ये चश्मा पूरी दुनिया तक फैल जाता अगर वो औरत जमजम ना कहती। जम का मानिए तो रुक रुक रुक, हिकमत थी। और मैं सोचती हूँ अगर जमजम पूरी दुनिया में होता, तो फिर आज हम बोतलों में भर के वहाँ से ना लाते, ये तो हर जगह मिलता है। अल्लाह ने उस जगह की खूबी को हमारे सामने रखा। एक माँ ने अपने बच्चे को जंगल में बसा दिया अल्लाह के हुक्म पे, तो एक और भी तो माँ थी ना, उम्मे मूसा। क्या कहा था अल्लाह ने, अनिकदी, डाल इसको, इसको संदूक में डाल, और संदूक को दरिया में डाल दे। किस्सा सुनाने की जरूरत तो नहीं है ना, किसी एक को भी नहीं जरूरत, मुझे यकीन है। लिखिए अपने ऊपर, अपने दिल से पूछिए, होगा नहीं इसलिए फिक्र ना करें। अगर आज ये हुक्म आपको और मुझे मिल जाए, آپ کا نیو بورن بیبی، اور اللہ کہتا ہے جاؤ اس کو دریا میں ڈال دو، اور سورت قصص پڑھ لیجئے، سورت طہٰ پڑھ لیجئے، اللہ کہتا ہے میں اس کو پلٹاؤں گا، اس کو لے کے آؤں گا تیرے پاس. وہ ماں کو اللہ کے وعدوں پہ اتنا یقین تھا کہ اللہ میرے بچے کو لائے گا. اور آپ دیکھیے وہی موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے، جو ڈر رہا تھا اس بچے کی پیدائش سے، اور واپس پلٹا کے موسیٰ کی ماں تک لایا گیا. کیا آج کی ماں کے اندر اللہ پہ اتنا توکل ہے؟ دشمن کے گھر میں بھی پل رہا ہے اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تیرا ہی ہے، ہم اس کو لے کر آئیں گے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے لگتے ہیں. اندر حوصلے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ آج گھر جانے کے بعد ورسٹ ٹو ورسٹ، یعنی برے سے برا، بدترین قسم کا کوئی بھی معاملہ اپنے ذہن میں لائیے، اور پھر اس کے بعد پوچھئے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا آپ کو اللہ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا؟ وہ مائیں اللہ کے حکم پر بچے کو دریا میں ڈال دیتی تھی، واللہ ہی آج ہم بچے کو بیبی سٹنگ میں نہیں ڈالتے. ہم کہتے ہیں ہم سنبھال لیں گے، میں کر لوں گی. وہاں دریا سے بچ کے آ گیا، ادھر ماں کی گود سے بچہ گرتا اور چوٹ لگ جاتی ہے. آج سے اپنے لیے ایک جملہ دل سے کہیے، میرا بچہ میرے رب کے حوالے. دلوں سے نکالیے ان کے وہم کو. اتنے وہم پالتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، یہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، اس کا فیڈر ابالو، اس کو فلٹر واٹر دو، اور اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے دھو. یہ کوئی قرآن ہے جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے دھونا ہے؟ اس کو نیچے نہیں گرانا، یہ مٹی نہ کھا لے، اس کو یہ نہ پڑ جائے، اس کو فلو نہ ہو جائے. پیدا نہیں ہوا تو پیٹ میں ٹیکے لگ رہے ہیں، باہر نکلا تو پہلی چوٹ اس کو انجیکشن کی. میں منع نہیں کر رہی، میں توکل سکھانا چاہ رہی ہوں. آج دیکھیے کہ اگر گاؤں میں رہنے والا بچہ جو مٹی میں پیدا ہوا اور مٹی والے پانی پی پی کے نہیں مرا، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ایکسٹرا کیئر کا تصور آج ہم نے دے دیا نا سائنس کے زیادہ پڑھنے اور سائنس کی ترقی سے، اس نے ہمارے بچوں کے ایمان کمزور کر دیے.